blessed Savior. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Jam Jasa Jamidese Jena Vihanena Jamikalami Nadam Jinena Niyadam Jammam Va Avamaranam Va Tam tassa tammi dese tena vihanena tammi kalammi kosakka divare dum indo vatah jinindo va evam jonishayado janadi dauvani sava pachaye so saddhitti sutto जो संक दिसो को देखे जिनागम के आधार से जो कार्य ने पर्याय हर समय होती है प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक गुण की उसके कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं। अनादि से यह जीव जिसकी मिथ्या बुद्धि अनादि से ही चली आ रही है उसको तो कार्य के कारणों का पता नहीं है, उसको जैसा लगता है वैसा ही मान लेता है। कारणों की चर्चा में हमने दो प्रकार के कारण देखे थे। कौन कौन से दो प्रकार देखे थे? हाँ, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारणों के भेद भी देखे थे हमने, याद है? हाँ, जोर से। हाँ, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। और भी दो प्रकार देखे थे, प्रेरक और उदासीन। हमने उपादान कारण के भी भेद प्रभेद देखे थे कल। एक एक कोई, हाँ बोलो। हाँ, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान के दो भेद कौन से हैं? हाँ, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय के पर्याय की योग्यता। ये दो जो एक ही समय में विद्यमान है, वर्तमान समय में विद्यमान है, उसको हमने क्षणिक उपादान समर्थ उपादान कारण कहा था। देखो, जिनागम में दो प्रकार के कथन आते हैं। एक तो होता है निश्चय कथन यानी रियलिटी वस्तु स्थिति, और दूसरा होता है औपचारिक कथन जिसको हम व्यवहार कथन कहते हैं। एक होता है निश्चय कथन, वस्तु स्थिति को जैसा है वैसा बताने वाला, उसको हम निश्चय कथन कहेंगे। और दूसरा होता है व्यवहार कथन यानी औपचारिक, ऐसा है नहीं फिर भी कहने में आता है। तो यहाँ जो हम यहाँ कारणों की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले निमित्त कारण बताया ही क्यों? यदि निमित्त से कार्य नहीं होता है तो निमित्त कारण कहने का प्रयोजन क्या था? क्यों, कोई कहेगा निमित्त कारण क्यों कहा? होता ही नहीं ना निमित्त से कुछ। निमित्त से कार्य नहीं होता फिर भी निमित्त वहां उपस्थित होता ही है, और उस कार्य में उचित निमित्त कौन सा है इसका ज्ञान कराया जाता है। हम भूल से निमित्तों में भी भूल कर बैठते हैं। सम्यक दर्शन रूपी जहां कार्य चल रहा है और कोई मानता है कि ये कुदेवादी की मान्यता चलती रहे और हमें सम्यक दर्शन हो जाए, सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय नहीं है और हमें सम्यक दर्शन हो जाए, तो ये मान्यता भूल भरी है। तो हमें सच्चे निमित्त का वहां ज्ञान करना है। अन्य पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर कौन सा उचित निमित्त है इसका ज्ञान किया जाता है, इसलिए निमित्त को बताया जाता है। अब निमित्त है, निमित्त कारण जो है उसको हम कहेंगे ये औपचारिक कारण है। हमने जो अभी चार कारण देखे, एक तो निमित्त कारण, त्रिकाली उपादान कारण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप कारण और तत्समय की योग्यता वाला कारण, हम उसको 1, 2, 3, 4 कहेंगे। जब हमें निमित्त पर से दृष्टि हटानी है तो हम कहेंगे ये जो निमित्त कारण है वो व्यवहार कारण है, औपचारिक कारण है, सच्चा कारण नहीं है। तो उसके सामने सच्चा कारण किसको कहेंगे, बोलो। एक नंबर हमने निमित्त कारण को दिया, उसके सामने हाँ त्रिकाली उपादान। निमित्त पर से, परद्रव्य पर से दृष्टि हटाने के लिए सच्चा कारण किसको कहते हैं, उपादान। त्रिकाली उपादान को हम पहले लेते हैं। देखो ये निश्चय और व्यवहार किसको कहना, टोडरमल जी ने क्या बताया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, हाँ सत्यार्थ सो निश्चय, और दूसरा क्या लिखा है मुख्य, हाँ मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। तो हमें अभी त्रिकाली उपादान को मुख्य करना है तो उसके सामने ये जो निमित्त का कथन किया है उसको क्या कहेंगे, ये गौण होकर उसको व्यवहार कहेंगे, वो है ही नहीं सच्चा कारण ऐसा कहेंगे। अब हमें कारण नंबर 2 और कारण नंबर 3 में तुलना करनी है। तो जो त्रिकाली उपादान तो अनादि से है और उसके सामने अभी हम उसके साथ अगर तुलना करते हैं कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप जो कारण है, इन दोनों में कैसा कहेंगे, कौन सा उपचार कारण और कौन सा निश्चय कारण कहेंगे। हाँ तो ये जो 2 नंबर त्रिकाली उपादान है उसको कहेंगे ये व्यवहार है, ये उपचार है, ये गौण कारण है। उसके सामने अनंतर पूर्व जो समर्थ उपादान कारण है उसको कहेंगे ये निश्चय कारण, ये सच्चा कारण है। अब नंबर 3 और नंबर 4 इन दोनों में हमें देखना है, मुख्य गौण करना है। तो क्या कहेंगे हम, पूर्व पर्याय के वैरूप कारण को हम गौण करेंगे और उसके सामने, उसके कंपेरिजन में तत्समय के पर्याय को, पर्याय की जो योग्यता है उसको सच्चा कारण कहेंगे। यानी इन सभी कारणों को बताने का प्रयोजन भी है और उसको व्यवहार करके उसमें से दृष्टि हटाने में भी प्रयोजन है, क्योंकि हमें पहले परद्रव्यों से भिन्न अपने पर दृष्टि लानी है या द्रव्य को ही वहाँ कर्ता कहना है, वहाँ कहेंगे निमित्त कारण ये झूठा कारण है, सच्चा कारण है ही नहीं। इस तरह से प्रयोजनवश किसको मुख्य किया जाता है और किसको गौण किया जाता है, मुख्य करें या गौण करें दोनों का ज्ञान तो होता ही है। औपचारिक कथन में भी उसका ज्ञान कराने का हमें प्रयोजन है। निमित्त का कथन भी इसलिए होता है कि वो निमित्त होता है और जो विशिष्ट कार्य में जो उचित निमित्त नहीं होते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि ये इसका निमित्त नहीं हो सकता। ये सारा प्रयोजन हमने देखा है। अभी तो हमारा विषय चलेगा षटकारक का। अभी हमने जो ये चार कारण देखे ना, निमित्त कारण और उपादान के 3 भेद, इन सभी का एक नाम है कर्ता कारक। क्या कहा, कर्ता कारक। ये कारक क्या होते हैं उसको भी देखेंगे, और कर्ता कारक कहा तो अन्य भी कितने ही कारक होने चाहिए, ये 2 बातें हमारे ख्याल में आती हैं। तो पहले कारक, कारक यानी करने वाला ऐसा कुछ होता है ना, तो हम देखेंगे उसमें कारक कहना किसे। हाँ देखो, हम कार्य किसको कहते हैं, जो परिणाम है, पर्याय है, दशा है, हालत, अवस्था, उसको भी परिणमन कहेंगे, उसको परिणाम भी कहेंगे, कहीं इसको भाव भी कहेंगे। ये जो अलग अलग शब्दों से हम कार्य को सूचित करते हैं, तो ये जो कार्य का जनक है, क्या कहा, जो कार्य का जनक है, कार्य को उत्पन्न करने वाला है उसको कहेंगे कारक। जैसे चालक किसको कहेंगे, चलाने वाला वो चालक, ऐसे कराने वाला या करने वाला उसको क्या कहेंगे, कारक। तो ये जो कारक है किसी ना किसी रूप में कार्य के प्रति जो प्रयोजक होता है, क्या कहा, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप, कौन कौन से रूप है उसको हम देखेंगे, क्योंकि कारक तो 6 होते हैं। तो जो 6 कारक है वो किसी न किसी रूप में कार्य के प्रति उनका कोई ना कोई योगदान है, कार्य के प्रति उनका कोई ना कोई वे प्रयोजक है, इसलिए उनको क्या कहेंगे? कारक। अभी तक हमने निमित्त कारण और उपादान कारण ये दो ही कारण देखे थे और वे दोनों ही कारण उनको कर्ता कारक कहने में आएगा। तो कार्य के प्रति जिनका योगदान है ऐसी अन्य भी कोई चीजें होनी चाहिए जिसको हम कारक कहेंगे, वे कौन सी है उसको हम देखेंगे। अभी कोई भी कार्य होता है तो वहां छह प्रश्न उठ सकते हैं। कोई प्रश्न मालूम है आपको? ये किसने किया, हम कहते हैं ना ये किसने किया, तो ये क्या बताता है? ये कार्य किसने किया, पहला प्रश्न क्या है? कार्य किसने कहा किया, उसका उत्तर क्या होगा? कर्ता। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या किया, इसने क्या किया, तो हम क्या कहेंगे? वो उसका कर्म। किसने किया वो कर्ता, उसने क्या किया वो उसका हुआ कर्म। तीसरा प्रश्न, किस साधन के द्वारा किया, तो उसको क्या कहेंगे? करण। एक करण शब्द सुना है कभी? उसका करण के क्या क्या अर्थ हो सकते, कोई एक कोई मुझे व्यक्ति बता, एक एक कोई बताना, एक हाँ कौन बताना चाहता है? हाँ बताओ। साधन, हाँ दूसरा माध्यम, और बोलो परिणाम, और हाँ बोलो अभी किसने कहा? तीन अर्थ देखे हमने, करण यानी साधन, आपने माध्यम भी बताया, और कौन सा बताया? परिणाम, और एक कोई अर्थ? इंद्रिय। अंतकरण शब्द नाम सुना है कि नहीं? हाँ हाँ, अंतकरण अंदर वाला करण है वो, उसको अंतकरण कहा, और ये सारी क्या है वो बाह्य करण है। गणित के जो सूत्र होते हैं उनको भी करण कहते हैं, ये करण की बात नहीं हो रही है, करण करण वो अलग बात है। तो ये जो गणित के कर्णानुयोग में, कर्णानुयोग नाम कैसे पड़ा? करण यानी भाव, परिणामों को भी करण कहते हैं, और ये गणित के जो सूत्र होते हैं, गणित के जो फॉर्मूले होते हैं, उसको भी करण कहते हैं, गणित को भी कहते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब यहाँ जो हम कार्य में जो करण की बात कर रहे हैं, यहाँ करण का अर्थ क्या है? साधन। किस साधन से ये कार्य हुआ संपन्न, उसको हम कहेंगे करण। चौथा प्रश्न, ये किसके लिए किया, ये कार्य जो किया है, कर्ता ने जो ये कर्म किया है किसके लिए किया, उसके उत्तर में क्या कहेंगे हम? हाँ, उसका जो उत्तर आएगा उसको हम कहेंगे संप्रदान। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको क्या कहेंगे? संप्रदान। पांचवा प्रश्न क्या है? किसमें से किया, जो ध्रुव वस्तु, कौन सी ध्रुव वस्तु में से ये कार्य किया, उसको कहेंगे अपादान। उपादान नहीं, अपादान। ये उपादान तो कार्य में हुआ, ये लोगों को ये शब्द नहीं समझते ना, जब हमने ये हिंदी में लिख दिए और DTP करवाई तो जहां जहां उपादान लिखा था वहां वहां उसने उत्पादन लिख दिया, उसको लगा इनकी कोई भूल होती होगी, हम इसको जरा सुधार के करें, इनको जरा मदद करें, तो क्या लिख दिया? उत्पादन। जहां जहां चरित्र लिखते थे वहां वहां चरित्र लिख देते थे, क्योंकि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, अपने जो आगम की जो टर्मिनोलॉजी, जो कोई पारिभाषिक शब्द है, लोगों को पता नहीं लगता ना इसमें। तो अभी तक हमने कौन कौन से देखे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और एक प्रश्न रह गया कि किसके आधार से किया, उसको कहते हैं अधिकरण। ये छह प्रश्न कौन बताएगा मुझे? हमने अभी कार्य संबंधी छह प्रश्न उठाए थे, कोई भी कार्य होता है तो ये छह प्रश्न उठते हैं। हाँ बोलो, आप बोलो पीछे। प्रश्न हमने कौन कौन से उठाए थे, कौन बताना चाहता है? आपने तो बताया एक, हाँ बोलो। हाँ, किसने किया, क्या किया, कौन से साधन से किया, किसके लिए किया, किसमें से किया, किसमें से किया और किसके आधार से किया। अब इसके उत्तर में जाओ, इसके उत्तर में हमें कौन कौन से उत्तर मिले, ये प्रश्नों के उत्तर में कौन कौन सी छह बातें हमने देखी। हाँ बोलो बोलो आप बोलो। हाँ करता, किसने किया वो करता, क्या किया वो कर्म, हाँ किस साधन से किया, माध्यम के बदले साधन कहो, किस साधन से किया तो करण, करण हाँ, किसके लिए किया उसको क्या कहेंगे, संप्रदान, किसमें से किया वो अपादान, हाँ किसके आधार से किया उसको कहेंगे अधिकरण। तो अभी ये हमें कारक कहने हैं, छह कारक कौन से हैं, कौन बताएगा हमें, केवल कारकों के नाम लिख समझ लें। हाँ बताओ पीछे, हाँ आपको छह कारक के नाम बताना है, हाँ ऐसा नहीं कहना कर्ता कारक, कारक लगाओ उसके आगे, हाँ 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 बहुत अच्छा। हमने छह कारक कौन से देखे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। हमने स्कूल में व्याकरण में देखा था, वहां विभक्ति होती है, क्या कहते हैं कारक ही कहते हैं, हिंदी में क्या कह रहे हैं, कारक ही कहते हैं। अच्छा उसमें से किस कारण कारकों को नहीं लिया, मराठी में हम उनको विभक्तियां कहते हैं, हाँ संबोधन को नहीं लिया और संबंध कारक, जो षष्ठी विभक्ति हम कहते हैं, जो संबंध बताने वाली है और जो संबोधन है, हे राम हे सीते, उसको भी नहीं लिया, क्योंकि ये जो संबंध सूचक जो कोई शब्द है वो कार्य में उनका कोई योगदान नहीं है, वो केवल संबंध बताते हैं, और किसी को बुलाना है संबोधन करना है तो वो भी कार्य में तो उसका कुछ प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये आठ विभक्तियों में से, जिसको आठ कारक हम कहेंगे, उसमें से छह कारकों को यहाँ कार्य के प्रति कोई ना कोई उनका योगदान है, कोई ना कोई वो प्रयोजक है, इसलिए कारकों में इन छह को ही ले लिया। कौन से छह कारक बताए अभी, हाँ बोलो आप बोलो, छह कारकों के नाम क्या देखे, हाँ कर्ता कारक, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ये हमने छह कारक देखे। अभी उसके संबंध में हम कोई दृष्टांत भी देखेंगे, उसमें भी कोई भिन्न कारक होते हैं, कोई अभिन्न कारक होते हैं, सुने कभी यहाँ कार, आपके तो कारक का षटकारक तो हो गए ना आपके, ये छह है ना, इसके लिए इसको कहते हैं षटकारक। तो इसमें भिन्न कारक क्या होते हैं, अभिन्न कारक क्या होते हैं, आप तो कहेंगे कि हमारा ये विषय हो गया यहाँ पर, इसलिए आपको पूछ रहा है, फिर हम कहेंगे, हम बताएंगे आपको। कौन बताना चाहता है, भिन्न कारक क्या होते हैं और अभिन्न कारक क्या होते हैं, बोलो मालूम है कि नहीं है, नहीं तो नहीं हम पढ़ेंगे इसमें से, नहीं बताया आपको, आपको पता है, बोलो हाँ हाँ, जो दो भिन्न द्रव्यों में घटित होते हैं ऐसा भिन्न है कि हम देखेंगे अभी, भिन्न किसको कहना और अभिन्न किसको कहना, निश्चय कारक किसको कहना और व्यवहार कारक किसको कहना। देखो पुस्तक निकालना आप, ये जो आपके हाथ में है ना, कारण कार्य रहस्य, देखो यहाँ 95 पृष्ठ है, 95, ये तो अभी हमने प्रश्न और उसके उत्तर भी देखे हैं और वो विभक्ति के नाम भी देखे हैं। अब प्रत्येक कारक की परिभाषा देखेंगे हम, पुस्तक नहीं आपके पास, यहाँ बहुत सारी पुस्तकें थी ना यहाँ पर, हाँ पुस्तक लेके बैठना अच्छा है क्योंकि हम यहाँ रेफरेंस भी देखेंगे। देखो कर्ता कारक, हमें अभी उसकी परिभाषा देखनी है, किसने कार्य किया वो सब तो हमने देख लिया, कौन से प्रश्न उठते हैं उसके उत्तर क्या है, तो ये तो बहुत स्थूल उसकी परिभाषा हुई, परंतु शास्त्र में आगम में उसकी परिभाषा क्या लिखी है उसके आधार से हम उसको समझेंगे। कर्ता कारक किसे कहना, जो स्वाधीनपने से स्वयं के परिणाम को करता है वह करता है, वो क्या है, कर्ता कारक है। स्वाधीनपने ने स्वतंत्रपने, आज गुरुदेव के प्रवचन में यही बात आई ना, जो स्वतंत्रपने करता है वो करता है। वहां तो अध्यात्म की बातें और अधिक, यानी अध्यात्म की अपेक्षा बात की थी, परंतु यहां तो हम साधारण यानी ज्ञान प्रधानता के अपेक्षा, ज्ञान प्रधान कथन की अपेक्षा पहले बात करेंगे, फिर गुरुदेव अध्यात्म की अपेक्षा क्या लगाते हैं उसको भी देखेंगे। तो यहां कर्ता कारक किसे कहना, तो जो स्वाधीनपने से यानी स्वतंत्रपने से कर्ता होकर अपने ही परिणाम को करता है वह कर्ता कारक है। कहीं भी नहीं लिखा कि वो पर क्या करता है। जब जीव को अकर्ता कहने में आता है या किसी भी द्रव्य को अकर्ता कहते हैं तो वो अपने परिणाम का कर्ता है कि नहीं है, तो अकर्ता क्यों कहते हैं? हाँ, पर का कर्ता नहीं है, पर के कार्य का कर्ता नहीं है, इसलिए उसको अकर्ता कहेंगे। फिर भी अपने सभी स्वयं के पर्यायों का कर्ता होता ही है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के परिणाम का कर्ता है, स्वाधीनपने है, स्वतंत्रपने है। निमित्त आया इसलिए वो कर्ता होकर उसने कार्य किया कि नहीं किया? निमित्त आया इसलिए जीव ने या किसी भी द्रव्य ने अपना कार्य किया, ये बात सच है कि नहीं? बोलो, सच है। निमित्त आया इसलिए द्रव्य अपने पर्याय रूप परिणामित हुआ ना? नहीं, यहां क्या लिखा है, स्वतंत्रपने, उसको किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं है। यहां सामने वस्तु है इसलिए ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये घड़ी देखकर ज्ञान हुआ ना, कितने बजे? तो ज्ञान स्वतंत्रपने स्वाधीनपने परिणमित होता है, तो किसको जाना इसको कहने के लिए हम कहेंगे वो घड़ी को जाना। तो सामने ज्ञेय वस्तु है इसलिए जीव ज्ञान रूप से परिणमित हुआ है, तो नहीं। जीव स्वाधीनपने ने स्वतंत्रपने अपने ज्ञान पर्याय का कर्ता होकर स्वयं ही ज्ञान पर्याय रूप से परिणमित होता है, तो हम कहेंगे जीव ज्ञान का कर्ता है। परद्रव्य सामने है इसलिए ज्ञान हुआ, ये बात तीन काल में नहीं हो सकती, इसको कहेंगे स्वाधीनपने कर्ता। हमें तो ऐसा भासित होता है, अरे सामने ज्ञेय नहीं होगा तो जीव को ज्ञान कैसे होगा, यही अनादि की भ्रमणा है। निमित्त से ही कार्य होता है माना है, परंतु प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपनी उपादान शक्ति से, स्वयं अपनी क्षणिक उपादान शक्ति से निश्चित समय पर निश्चित पर्याय का कर्ता होकर स्वयं उस रूप परिणमित होता है, तो हम उसको कहेंगे ये उसका कर्ता कारक है। अब कर्म कारक किसको कहना, आगे पढ़ते देखो, कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म। परिणाम को उसने प्राप्त किया कहा, उस परिणाम रूप से पर्याय रूप से वो परिणाम, वो जो करता है वो परिणमित हुआ, उसको क्या कहा, परिणाम को प्राप्त हुआ। ये प्राप्त हुआ इस आधार से कार्य को पर्याय को समयसार में कुछ नाम दिया है, वहां तीन नाम आते हैं, एक होता है प्राप्य, सुना है कभी? हाँ, थोड़ी थोड़ी जरा गाड़ी स्टार्ट होने में टाइम लगता है ना, प्राप्य विकार्य निर्वृत्त। तो ये प्राप्य ने कर्ता स्वयं अपने परिणाम को प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहा, वह उस कर्ता का कर्म है। अभी हमने दो बातें देखी, कर्ता और कर्म, कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता किसको कहना, बोलो, कर्ता किसको कहना है, जो स्वाधीनपने अपने परिणाम को करता है, अपने पर्याय को करता है। और कर्म किसको कहना, हाँ, जो कर्ता स्वयं अपने परिणाम को प्राप्त होता है। तो अभी हमें कर्ता और कर्म संबंध के बारे में देखना है, कर्ता कर्म संबंध किसका किस में होगा। द्रव्य का, स्वयं का, अपने स्वयं की पर्याय के साथ कर्ता कर्म संबंध होगा, पर के साथ उसका कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, पर द्रव्य की पर्याय के साथ उसका कोई कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं। अभी तो हमने दो ही कारक देखे, अभी और आगे बढ़ेंगे। देखो करण कारक, करण का अर्थ हमने यहां क्या किया था, साधन। उस परिणाम के उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं, यानी किस साधन के द्वारा कर्ता ने यह कार्य किया उसको क्या कहेंगे, करण कहेंगे। चौथा कौन सा कारक देखा, संप्रदान कारक। आगे देखना 96 पृष्ठ पर, कार्य जिसे देने में आता है अर्थात जिसके लिए वह कार्य किया गया हो उसे क्या कहेंगे, संप्रदान। या हमें तो यहां कारक लगाना है ना शब्द आगे, संप्रदान कारक कहेंगे। इसके हम दृष्टांत भी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद नंबर किसका है, अपादान कारक। अपादान कारक किसके कहने, किसे कहना, जिसमें से कार्य करने में आता है उस ध्रुव वस्तु को क्या कहेंगे, अपादान कारक। अब कौन सा रह गया, अधिकरण कारक। जिसमें या जिसके आधार से कार्य करने में आता है उसे अधिकरण कहते हैं या अधिकरण कारक कहते हैं। ये तो हमने 6 कारक देखे और उसकी परिभाषा भी देखी। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में, क्योंकि कार्य प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक पर्याय में हो रहा है ना, वहां कार्य हो रहा है तो जहां कार्य है वहां उस कार्य के 6 कारक भी होंगे। तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में 6 कारक एक साथ रहते हैं, पहले करता आया बाद में उसने कर्म किया फिर उसने वहां कर्म को ले लिया, ऐसा नहीं है। 6 कारक एक साथ विद्यमान रहते हैं क्योंकि कार्य एक समय का है, तो उसके कारक कितने समय तक रहेंगे पर्याय वाले, एक समय के लिए। जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध पर्याय रूप से या अशुद्ध पर्याय रूप से, शुद्ध पर्याय ने स्वभाव पर्याय और अशुद्ध पर्याय ने विभाव पर्याय। जीव और पुद्गल ये दोनों को ही क्यों लिया, धर्म अधर्म आकाश काल का नाम क्यों नहीं लिया यहाँ पर। हाँ बोलो, हाँ हाँ, वो हमेशा स्वभाव रूप से ही परिणमित होते हैं। ये स्वभाव और विभाव ये दो शक्यता किसमें है, जीव और पुद्गल में। तो जीव और पुद्गल द्रव्य स्वभाव रूप परिणमित हो या विभाव रूप परिणमन करते हो तो स्वयं ही 6 कारक रूप होकर परिणमन करते हैं। जीव स्वयं 6 कारक रूप होकर स्वभाव रूप परिणमन भी करता है और जीव ही स्वयं 6 कारक रूप होकर विभाव रूप यानी रागादि रूप भी परिणमन करता है। यहां तो ज्ञान प्रधान बात चल रही है, बारंबार समय सार के कथन के साथ विरोध हमें भाषित होगा, परंतु ज्ञान प्रधान को हम जानकर फिर अध्यात्म की दृष्टि से ये जो रागादि का करता ऐसा जीव को मानना या जो बातें होती है उसका निषेध किया जाता है। यहाँ पहले में पहले ज्ञान पद्धति से स्वीकार होना चाहिए, ख्याल में आती है बात। ज्ञान प्रधान कथन अलग बात होती है और दृष्टि प्रधान कथन अलग होता है। हमें तो दोनों को ही व्यवस्थित रीति से अपेक्षा सहित उसको जानना आवश्यक है। यहाँ तो पहले में पहले ज्ञान प्रधान कथन चलेगा। तो जीव स्वभाव रूप परिणमित होता हो या विभाव रूप परिणमित होता हो वह स्वयं ही अपने 6 कारकों से उस रूप परिणमित होता है। उन्हें अन्य कारणों की अर्थात निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं होती। 85 गाथा 62 की टीका में यह कथन है। क्या किया है 85 में कथन, देखो वहां तो ये बात बताइए, पुद्गल के ऊपर भी 6 कारक घटाए हैं। कौन सा पुद्गल, अभी कर्म की जो उदय रूप अवस्था, और जीव में क्या होता है, मोहराग द्वेष आदि होते हैं। वहां कर्म के उदय में जीव को मोहराग द्वेष होता है ऐसा जो निमित्त का कथन आता है तो उसमें वहां घटित किया है कर्म का उदय जो है, कर्म की जो परिणति है, कर्म जो उदय रूप अवस्था है, फलदान रूप जो अवस्था है वो उसके अपने स्वयं के 6 कारकों से परिणमित होता है, और जीव की जो विभाव रूप अवस्था है वो स्वयं अपने 6 कारक रूप से परिणमित होता है। तो कर्म के 6 कारक भिन्न और जीव के 6 कारक भिन्न है। तो वहां लिखा है, देखो ये भावार्थ में पढ़ती हूँ क्योंकि वैसे तो गाथा का टीका बहुत बड़ी है, 62 नंबर जो गाथा है 85 की, वहां लिखते हैं इस प्रकार पुद्गल की कर्मोदयादि रूप से कर्म के उदय रूप अवस्था किसकी है? पुद्गल की है। या कर्म बंधादि रूप से कर्म का बंध होना, ये भी पुद्गल की अवस्था। कर्म की अवस्था कर्म में उसके अपने से होती है, और कर्म का उदय रूप अवस्था वो भी पुद्गल में उसके अपने से अपने में होती है। उस क्रिया में वास्तव में पुद्गल ही स्वयमेव छह कारक रूप से वर्तता है। स्वयमेव क्योंकि हमने देखा स्वाधीन पने से करता होता है, अपने ही परिणाम का करता है, वो उसके अपने ही वहाँ सभी कारक लगते हैं। तो पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म के बंध रूप से भी और कर्म के उदय रूप से भी परिणमित होता है, उसमें पुद्गल के षटकारक लगते हैं, उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। कौन से अन्य कारक? जीव की भावों की वगैरह उसकी अपेक्षा वहां नहीं है। अब जीव में घटित करते हैं, जीव की औदयिकादि भाव रूप से परिणमित होने की क्रिया में औदयिकादि भाव विभाव है कि स्वभाव है? हाँ, औदयिकादि भाव यानी कौन सा? ये मोहराग द्वेष के परिणाम देखेंगे अभी हम, उसके जो शुभाशुभ भाव है उसकी इतनी बात करेंगे अभी हम। तो ये जो जीव में जो औदयिक आदि भाव हो रहे हैं, उस जो वो क्रिया चल रही है, वो जो कार्य चल रहा है, वास्तव में जीव स्वयं ही छह कारक रूप से वर्तता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं। इसका अर्थ क्या है? जीव में जो मोहराग द्वेष होते हैं वो अपने स्वयं के षटकारक से होते हैं, उसके कर्म के षटकारकों की अपेक्षा नहीं। कर्म में जो बंध और उदय होते हैं वो स्वयं अपने षटकारक से होते हैं, उसको जीव के भावों की अपेक्षा नहीं। कथन में, व्यवहार कथन में तो ऐसा है, जीव जब तत्व विचार में जुड़ जाता है तो कर्मों का उपशमादि अवस्था हो जाती, फिर भी वो स्वयं अपने से होती है। निमित्त के कारण अगर कथन करना है तो हम कहेंगे वहां जीव अपने, उसकी विशुद्धि बढ़ रही है ना, तत्व ज्ञान के विचार में वो जुड़ गया है, इसलिए वहां कर्मों की अनुभाग शक्ति अपने ही स्वयं घटती है। निमित्त का कथन है, फिर भी सच्चा कथन क्या है? कर्म के षटकारक कर्म में और जीव के षटकारक जीव में। पुद्गल की और जीव की उपरोक्त क्रियाएं कौन सी उपरोक्त? कर्म में बंध और उदय और जीव में मोहराग द्वेष परिणाम। ये जो क्रिया है एक ही काल में वर्तती है, यानी एक ही समय में ये दो द्रव्यों की अपनी अपनी क्रियाएं होती है, तथापि पौद्गलिक क्रिया में वर्तते हुए पुद्गल के छह कारक जीव कारकों से बिल्कुल भिन्न है, निरपेक्ष है। पुद्गल के छह कारक जीव के छह कारकों से भिन्न है और वो निरपेक्ष है, वहां किसी एक दूसरे की अपेक्षा है ही नहीं। तथा जीव भाव रूप क्रिया में वर्तते हुए जीव के छह कारक पुद्गल कारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष है। वास्तव में इन रियलिटी यथार्थता क्या है? किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के कारक स्वतंत्र है, वो स्वयं अपने षटकारकों से अपनी पर्याय रूप से परिणमित होता है, उससे अन्य द्रव्य के कारकों की कोई भी अपेक्षा नहीं है। ये तो बात हुई पंचास्तिकाएं की। अब हम यहाँ कारण कार्य रहस्य पुस्तक में आते हैं वापस। देखो, जब निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए भिन्न द्रव्यों को अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता है, क्या कहा? कहा जाता है नहीं है? निमित्तों को भी कारक जहां कहने में आता है, जैसे हम क्या कहेंगे? कुम्हार कर्ता, गढ़ा उसका कर्म, यानी हमने अन्य अन्य कारक अन्य अन्य वस्तु में बना दिए, उसको कहेंगे भिन्न कारक। अभी हमने भिन्न अभिन्न की बात पूछी थी ना। यहां जब निमित्त के कथन करना है, जैसे घड़ा बना यह कार्य हुआ, तो किसने बनाया? यदि हम कुम्हार ने बनाया कहेंगे, कुम्हार को कर्ता कहेंगे, तो परद्रव्य को हमने परद्रव्य का कर्ता कहा, यह हुआ भिन्न कारक। ख्याल में आते हैं? घड़ा बनाया अन्य वस्तु में हुआ, साधन क्या था उसका? वो चाक था, डंडा था, अन्य साधन। फिर किसके लिए? ये घड़ा जो पानी भरने के लिए कोई और लोगों के लिए उसने घड़ा बनाया, किस में से बनाया? वो मिट्टी में से बिना बनाया। किसके आधार से बनाया? तो कोई वहाँ जमीन है उसके आधार से, पृथ्वी के आधार से बनाया। तो अन्य कर्ता, अन्य कर्म, अन्य करण, अन्य संप्रदान, अन्य उपादान और कोई अन्य ही उसका अधिकरण, इसको कहेंगे भिन्न कारक। क्या कहेंगे? भिन्न कारक। भिन्न भिन्न द्रव्यों पर हमने कर्ता कर्म करण आदि घटित किए हैं, इसको कहेंगे भिन्न कारक। देखो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है ना उदाहरण, यानी निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए भिन्न द्रव्यों को अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता है, तब निश्चित रूप से समझना कि वे व्यवहार कारक है। कुम्हार कर्ता घड़ा कर्म, चक्र दंड दोरी करण है, पानी भरने वाले के लिए घड़ा बनाए इसलिए पानी भरने वाला संप्रदान है, टोकरी में से मिट्टी निकालकर घड़ा बनाए इसलिए टोकरी उपादान है, और जमीन के आधार से घड़ा बनाए इसलिए जमीन अधिकरण है। तो ये क्या हुआ सारे? प्रत्येक कारक भिन्न भिन्न है इसलिए इनको भिन्न कारक कहेंगे। नीचे की लाइन में अंतिम लाइन, अन्य कर्ता, अन्य कर्म, अन्य करण, अन्य संप्रदान, अन्य उपादान और अन्य अधिकरण होने से ये व्यवहार कारक है। जहाँ व्यवहार कारक कहा है वहाँ कोई निश्चय कारक होने ही चाहिए। जहाँ उपचार कथन है तो हमें जानना आवश्यक है कि निश्चय कथन क्या होता है, वस्तु स्थिति क्या होती है। तो यहाँ लिखते हैं प्रवचन सार गाथा 16 के भावार्थ में कहा है कि वस्तु स्थिति देखने पर, यानी इन रियलिटी परमार्थ से देखने पर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो ही नहीं सकता, इसलिए ये व्यवहार 6 कारक असत्य है और उनको कारक कहना औपचारिक कथन है। उपचार से तो हम कहेंगे ना, आइए आपका ही घर समझिए, आप ही का घर है तो हम वही उसी को अपना घर समझते हैं क्या? ये तो लौकिक उपचार की बात है। यहाँ भी जिनागम में उपचार कथन बहुत सारे होते हैं, परंतु उसको सही समझने की भूल हमें नहीं करना चाहिए। अभी जो हमने अन्य 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 जो कर्ता कर्म करण आदि देखे हैं वो व्यवहार कारक है, औपचारिक कथन है, तो हमें सत्य कथन क्या है उसको समझना चाहिए। तो प्रवचन सार गाथा 16 में बताया है कि ये जो अन्य द्रव्य को कर्ता, अन्य को कर्म आदि कहना है ये उपचार है, वे वस्तु स्थिति नहीं है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि व्यवहार कारक असत्य है तो फिर सत्य कारक निश्चय कारक कौन से है? अब वह हमें अपने घड़े के उदाहरण पर फिर घटित करेंगे। देखो आचार्य हमेशा ही वो घड़े का उदाहरण, घट या पट का ही उदाहरण देते थे ना, क्योंकि वो सब उससे परिचित थे। मिट्टी स्वतंत्रपने से घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, अभी एक ही द्रव्य में घटित कर रहे हैं, मिट्टी स्वयं परिणमित हो रही है। हमने देखा जो स्वतंत्रपने से, स्वाधीनपने से अपने ही पर्याय रूप से परिणमित होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। तो मिट्टी स्वतंत्रपने से घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है इसलिए मिट्टी कर्ता और घड़ा कर्म, अथवा घड़ा और मिट्टी अभिन्न होने से मिट्टी स्वयं ही कर्म है। क्या कहा? द्रव्य और पर्याय अभेद वस्तु है, वो कोई उससे भिन्न वस्तु तो है ही नहीं है, तो उनको एक गिनकर द्रव्य स्वयं ही कर्ता और द्रव्य स्वयं ही कर्म ऐसा कहेंगे हम। वहां पर स्वयं के परिणमन स्वभाव द्वारा मिट्टी ने घड़ा बनाया, कौन सा साधन लिया यहां पर? अपना ही परिणमन स्वभाव। तो द्रव्य अपने ही परिणमन स्वभाव से अपने पर्याय रूप से परिणमित होता है, तो उसका वो स्वभाव ही अपना, उसको हम यहाँ करण कहेंगे। मिट्टी स्वयं ही करण है, मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म स्वयं को ही दिया इसलिए मिट्टी स्वयं ही संप्रदान है। जैसे हमारी ज्ञान पर्याय किसके लिए होती है? गुरु की ज्ञान पर्याय शिष्य के लिए होती है? नहीं, अपने ही लिए होती है। तो जीव ज्ञान की पर्याय अपने ही को देते हैं, सुख की पर्याय जो अपने को ही देता है, तो उसको क्या कहा? संप्रदान। मिट्टी ने स्वयं में से पिंड रूप अवस्था को नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया, पूर्व अवस्था को नष्ट करके उसने भी वर्तमान की पर्याय रूप परिणमित हुआ और वह स्वयं ध्रुव रही। कोई सूत्र याद आता है इसमें से? क्या लिखा है, मिट्टी ने स्वयं ही पिंड रूप अवस्था का व्यय करके घड़ा रूप कर्म किया और स्वयं कैसी रही, ध्रुव रही। हाँ बोलो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो पूर्व पर्याय का व्यय किसने किया, उत्तर पर्याय का उत्पाद किसने किया, स्वयं ध्रुव कौन रही, तो मिट्टी। यहां पर हमारे उदाहरण में मिट्टी ने स्वयं के आधार से घड़ा किया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार पहले हमने कौन से कारक देखे थे, भिन्न कारक, अन्य द्रव्य कर्ता, अन्य द्रव्य कर्म, अन्य द्रव्य करण वगैरह वगैरह। अभी एक ही द्रव्य पर छह कारक घटित किए हैं, इसको क्या कहेंगे, अभिन्न कारक। इस प्रकार छह कारक अर्थात अभिन्न कारक एक ही द्रव्य में, कौन से द्रव्य में, जीव के पुद्गल, प्रत्येक द्रव्य में, छह द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने होते हैं। अपने अपने क्यों, प्रत्येक द्रव्य के गुण अपने अपने होते हैं। भले हम ऐसा कहते ना, ये अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में है, तो सभी द्रव्यों में मिलकर एक होता है ना, क्यों, क्या होता है, प्रत्येक का अपना अपना होता है। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहाय नहीं कर सकता, सहाय मदद असर उपकार कुछ भी नहीं कर सकता। द्रव्य स्वयं ही स्वयं को स्वयं द्वारा, देखो षटकारक के नाम है, स्वयं ही यानी करता, स्वयं को ही करता है यानी वो कर्म करता है, स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं में से स्वयं के आधार से कार्य करता है, इसलिए निश्चय कारक ही परम सत्य है। पहले हमने व्यवहार कारक को असत्य कहा था, यहाँ क्या कह रहे हैं, निश्चय कारक ही परम सत्य है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही स्वयं के अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण होने के कारण, प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, वो स्वयं अपने पर्याय रूप परिणमने की उसमें शक्ति है, वो अपने ही षटकारकों से पर्याय रूप परिणमित होते, कब से चला रहा है, अनादि से। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत शक्ति से परिपूर्ण है, स्वयं ही षटकारक रूप होकर स्वयं का कार्य करने में समर्थ है, उसमें बाह्य सामग्री की किंचित मात्र मदद नहीं कर सकती। क्या कहना चाहते, प्रत्येक वस्तु परमाणु हो या जीव हो, जड़ हो या चेतन हो, प्रत्येक वस्तु यानी प्रत्येक द्रव्य अपने में ही परिणमित होता है और उसके अपने अपने षटकारक उसमें स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उसे कोई अन्य वस्तु की कोई भी अपेक्षा मदद असर कुछ नहीं होता। निमित्त के षटकारक निमित्त में और जो उपादान के षटकारक उपादान में, उपादान अपने पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, निमित्त भी वो भी उपादान द्रव्य है ना, तो वो भी अपने पर्याय रूप से परिणमित होता है, दोनों अपने अपने में स्वतंत्र रूप से परिणमित होते हैं। जिस समय पुद्गल कर्म रूप अवस्था में पाया जाता है, वहां जीव अपने भाव रूप अवस्था स्वयं करता है, बिल्कुल एक दूसरे से निरपेक्ष रूप से दोनों द्रव्य परिणमित होते हैं, तो एक ने दूसरे का कार्य किया ऐसा उपचार करते हैं, इसको कहेंगे निमित्त। और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध देखने में आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कार्य किया, परंतु ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। द्रव्य की पर्याय की इतनी स्वतंत्रता ख्याल में आए बिना हम निश्चिंत निराकुल नहीं हो सकते। ये षटकारक आदि जानने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि हमें कारण की पहचान नहीं है और अपने कार्य का कारण हम बाहर ढूंढते रहते हैं कि हमें ये कार्य तो करना है, अब कौन हमें मदद करेगा, ये हमें निमित्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो आगे पढ़ेंगे, ये छह कारक प्रत्येक समय में रहते हैं, क्यों रहते हैं, षटकारक प्रत्येक समय में क्यों पाए जाते हैं, बोलो। हाँ, क्योंकि कार्य प्रत्येक समय में होता है, कार्य यानी पर्याय प्रत्येक समय में हो रही है, तो षटकारक भी प्रत्येक समय में पाए जाते हैं। एक कारक क्या है बोलो, द्रव्य है, गुण है के पर्याय है? गुण है, और गुण है तो उसकी पर्याय होगी कि नहीं होगी? तो ये कारक के नाम कहीं गुण रूप से आपने सुने हैं? हाँ बोलो। हाँ, 47 शक्ति में, तो 47 शक्तियां तो आत्मा की है ना, तो अन्य द्रव्य में भी होगी नहीं होगी? अच्छा, आप क्या कहते हैं? जो 47 शक्ति में 6 कारकों के नाम आए हैं कौन से हैं? हाँ, कर्तृशक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति। संबंध शक्ति को लेना, कारक में नहीं लेना। शक्ति हो अरे नहीं दो ना, हम कहा ना कहते। तो ये जो 6 शक्तियां हैं कौन से द्रव्य में होती है? हाँ बोलो। ये जो कारक संबंधी 6 शक्तियां अभी हमने वो 47 शक्ति में से देखी, जो समय सार में लिखी है परिशिष्ट में, कौन से द्रव्य की बात है ये? जीव द्रव्य में ही 6 कारक है ना, तो शक्ति अकेले जीव में थोड़ी है, ये सभी इसमें कितनी ही सामान्य शक्तियां हैं। नहीं समझे? ये ज्ञान संबंधी शक्तियां मान लेते हैं जीव में, परंतु अन्य कितनी ही शक्तियां, 47 शक्तियां मालूम है किसको? याद है? नहीं याद है? जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व। ये प्रभुत्व विभुत्व हर एक में होगा ना? हाँ, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशकत्व, ये तो भले जीव की है। असंकुचित विकासत्व, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने पूर्ण विकास होने की शक्ति है कि नहीं है? अकार्य कारणत्व, कौन से द्रव्य की बात है? हाँ, प्रत्येक द्रव्य की बात है। अकार्य, दूसरे का कार्य का कर्ता नहीं है, अकार्य और अकारण, ना किसी का कार्य है ना किसी का कारण है। अपना कार्य भी अपना कारण भी स्वतंत्र है, स्वयं है, परंतु पर का ना कार्य है और परन का ना कारण है। तो ऐसी कौन कौन से द्रव्य में अकार्य कारणत्व शक्ति होगी? 6 द्रव्य में। इतनी कितनी ही शक्तियां ऐसी है कि वो 6 द्रव्य में पाई जाए। सभी लगाओ अभी, त्यागोपादान शून्यत्व किसमें होगी? अगुरु लघुत्व किसमें होगी? समझ में आता है ना? उत्पाद वेद ध्रुवत्व किसमें होगी? तो यहाँ तो आत्मा की अपेक्षा बात की है, तो आत्मा की 47 शक्तियां कहेंगे, अन्य द्रव्य की बात करेंगे तो उसकी कहेंगे। तो ये जो 6 कारक संबंधी जो कर्तृशक्ति कर्म शक्ति जो है, वो शक्तियां तो सभी द्रव्य में अपनी अपनी होगी। बात ख्याल में आती है? आत्मा की आत्मा में है, जड़ की जड़ में है, तो इसमें कितने ही तो सामान्य शक्तियां हैं जो सभी द्रव्यों में पाई जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर सत्यानेव पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। ये 6 कारक प्रत्येक समय में रहते हैं, ये कारक क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय? 6 कारक सर्व द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुण है। क्या कहा? ये अभी तो सिद्धांत त्रयोदशिका में केवल 6 सामान्य गुण देखे ना, और आपको अनंत गुण चाहिए थे, ये 6 और जोड़ दो उसके साथ। हाँ, अभी हमने शक्तियां कितनी सामान्य देखी, वो सारे सामान्य गुण ही तो है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में वे पाए जाते हैं। देखो यहाँ लिखा ही है, समय सार ग्रंथ में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन आता है, उसमें भी ये 6 शक्तियां बताई है, कर्तृशक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति। अब 6 कारक गुण है, तो गुणों में पर्याय होती है कि नहीं होती? कब होती है? प्रति समय, यानी निरंतर, अंतर छूटे बिना। 6 कारक गुण है और उनका भी परिणमन निरंतर चलता रहने से प्रत्येक पर्याय में क्या कहा आगे? नए नए पर्याय रूप 6 कारक, नई पर्याय रूप नहीं, नए नए कारक। कैसे? पर्याय रूप कारक, एक तो है गुण रूप कारक और एक है पर्याय रूप कारक। 6 कारक गुण है तो हर समय पर्याय रूप कारक भी वहाँ होगे ही होगे। तो हर समय प्रत्येक पर्याय में नए नए पर्याय रूप छह कारक पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न है, स्वतंत्र है। देखो, जब द्रव्य और पर्याय में हमें भेद करना है तो हम पर्याय के कारक पर्याय में कहेंगे, और द्रव्य में तो गुण रूप कारक है और पर्याय में पर्याय रूप कारक है, हम भिन्नता दर्शाएंगे। द्रव्य और पर्याय को अभेद करके कथन करना है तो हम उसको अभेद कारक कहेंगे। जहां जैसी अपेक्षा होती है वैसा वहां कथन भी होता है। कहीं कहीं पर्याय से लक्ष्य छुड़ाना है तो हम कहेंगे पर्याय के कारक भिन्न है। पर्याय और द्रव्य तो अभेद एक चीज होती है, कोई भिन्न दो वस्तुएं तो होती नहीं है। तो वहां द्रव्य और पर्याय को अभेद करके द्रव्य ही कर्ता और द्रव्य ही कर्म कहेंगे, और जब पर्याय को भिन्न बताना है तो द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म ऐसा कहेंगे। ख्याल में आती विवक्षा? विवक्षा के भेद से कथन में अंतर हो सकता है, परंतु हमें तो वस्तु स्थिति कैसी है उसका निर्णय करना है। क्या कहते हैं यहां देखो, इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न है, स्वतंत्र है। अनेक लोगों का प्रश्न है कि द्रव्य त्रिकाल शुद्ध होने पर पर्याय अशुद्ध किस प्रकार हो सकती है। आपने भी ये चर्चा सुनी होगी, द्रव्य कैसा है? त्रिकाल शुद्ध, और पर्याय भी क्या है? अशुद्ध। तो जो त्रिकाल ही शुद्ध है उसमें से जो प्रति समय निकलने वाली पर्याय अशुद्ध क्यों होती है, प्रश्न तो यह है ना। उस प्रश्न का उत्तर अब ख्याल में आएगा। प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न होने से पर्याय तत्समय की योग्यता से ही उत्पन्न होती है। अब पर्याय की स्वतंत्रता बता रहे हैं कि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों, तो पर्याय स्वयं अपने षटकारक रूप से परिणमित होती हुई उस समय की अपनी योग्यता से वहां उत्पन्न होती है। ये योग्यता द्रव्य में ही पड़ी है, उसको हम अशुद्ध उपादान कहेंगे, फिर भी इसको पर्याय पर से हमें लक्ष्य छुड़ाना है तो कहेंगे ये पर्याय अपने कारण से उत्पन्न होती है।
पर्याय के षटकारक अशुद्ध और गुण के षटकारक शुद्ध।
गुण के षटकारक तो गुण स्वरूप है, त्रिकाली है, पर्याय के नए नए होते हैं। तो स्वभाव पर्याय में हम स्वभाव रूप कहेंगे, विभाव पर्याय में उसके जो, यानी विभाव के भी अपने षटकारक है और स्वभाव के भी अपने षटकारक है। क्या कहते हैं? पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न होने से पर्याय तत्समय की योग्यता से ही उत्पन्न होती है, परंतु हम किसी कार्य के लिए पर पदार्थों को जिम्मेदार मानकर उनके प्रति राग द्वेष करते हैं। ये पर्याय क्यों उत्पन्न होती है? अपने में जो क्रोध आदि की पर्याय उत्पन्न हुई वो स्वयं अपने षटकारक से उत्पन्न हुई है, और हम क्या मानते हैं? इसने हमें तकलीफ दी इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो हमने पर को जिम्मेदार मान लिया। तो पर को जिम्मेदार मान लिया, मेरे दुख का कारण ये पर व्यक्ति है, तो उसके प्रति हमारे द्वेष के परिणाम शुरू हो जाते हैं। ये राग द्वेष भी स्वयं के षटकारकों से उत्पन्न होते हैं पर पदार्थों के कारण ही। क्या कहा? राग द्वेष रूप जो विभाव है वो स्वयं के अपने षटकारकों से उत्पन्न होते हैं, पर पदार्थों के कारण नहीं। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है इसलिए हो गए कि नहीं हो गए? चारित्र मोहिनी का उदय है इसीलिए क्रोध माया आदि होते हैं ना, ये कर्म के षटकारक कर्म में है, और जीव के जो उसके जो षटकारक है पर्याय के षटकारक जीव में है, क्योंकि कर्म पुद्गल की पर्याय है और राग द्वेष जीव की पर्याय। अभी हमने पंचासी काय में पढ़ा था ना, यही तो बात पढ़ी थी वहां पर, पंचासी का गाथा 62 में यही तो बात पढ़ी थी हमने। कर्म का उदय हो या कर्म का बंध हो, यह पुद्गल की अवस्था पुद्गल में उसके षटकारक से होती है, और जीव के मोह राग द्वेष परिणाम ये जीव की अवस्था उसके षटकारक से जीव में होती है। समय सार कलश 49 में कहा है कि व्याप्य व्यापक भाव हुए बिना कर्ता कर्म स्थिति हो नहीं सकती। ये व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है? आज ही हुआ सुना आपने सुबह? हाँ बोलो, व्यापक कौन होता है और व्याप्य क्या है? बोलो, व्यापक किसे कहना और व्याप्य किसे कहना, कौन कहना चाहता है? हाँ बोलो। हाँ, द्रव्य व्यापक है, उसकी पर्याय उसका व्याप्य है, परद्रव्य की पर्याय उसका व्याप्य नहीं हो सकती। तो व्याप्य और व्यापक, व्यापक द्रव्य और व्याप्य उसकी पर्याय, तो व्याप्य और व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में होता है। तो व्याप्य व्यापक हुए बिना वहां हम कर्ता कर्म संबंध नहीं लगा सकते, यानी जहां व्याप्य व्यापकपना संभव है वहीं पर कर्ता कर्मपना कहेंगे। द्रव्य स्वयं कर्ता और पर्याय उसका कर्म। तो ये राग भाव हुआ तो कौन व्यापक और कौन व्याप्य? जीव में मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, हाँ, व्यापक कौन और व्याप्य क्या है उसका? हाँ, पुद्गल द्रव्य व्यापक, क्योंकि हमने गुरुदेव के प्रवचन में सुना है, उसके विरुद्ध हम कैसे बोलेंगे? क्यों भाई, अभी हमारा ज्ञान प्रधान कथन चल रहा है, अशुद्ध उपादान भी देखा हमने, हमने ये भी देखा स्वभाव पर्याय हो या विभाव पर्याय हो, जीव स्वयं व्यापक होकर वो पर्याय का करता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? पहले इसको स्वीकार तो करो, फिर अध्यात्म की अपेक्षा हम इसको गौण करके उसका निषेध भी करेंगे। तो पहले में पहले क्या कथन होगा? जीव व्यापक है और मोह राग द्वेष के परिणाम उसके व्याप्य हैं। आज ही गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई थी कि जीव का जो वितरागी परिणाम है वही उसका व्याप्य है, और जो राग परिणाम है उसमें वो उसका व्यापक है ही नहीं। जीव, बात आई थी ना आज सुबह, क्यों? क्योंकि जो धर्मी जीव है, धर्मी यानी जो समय दृष्टि जीव है, जो साधक जीव है, उसके पर्याय में राग है तो राग का कर्ता है ही नहीं। वहां क्या कहा? पुद्गल व्यापक है। कौन सा पुद्गल? पूर्व कर्म का उदय है उसको व्यापक कहा है, और वो जीव के मोह राग द्वेष परिणाम उसको व्याप्य कहा है, और वहां जो जीव की ज्ञान की परिणति है, स्वपर प्रकाशक जो जान रहा है, जो वीतराग भाव है, उसको उसका व्याप्य कहा। ख्याल में आया? अपेक्षा ख्याल में आ गई? पहली जो हमने अपेक्षा बताई वो ज्ञान प्रधान कथन जो प्रवचन सार में मुख्यता से बताई गई, और अभी जो आपने सुनी सुबह में गुरुदेव के प्रवचन में भगवान आत्मा की बात आती है, भगवान आत्मा यानी त्रिकाली जो शुद्ध है उसके साथ निर्मल पर्याय को उसके पर्याय कह देते और विभाव रूप पर्याय को उससे भिन्न बताते, उससे भेद गयन करने का अपना प्रयोजन है, उसमें से अपनत्व दृष्टि हटाने की बात है, तो निर्मल पर्याय को भगवान आत्मा के साथ रख देते हैं और फिर उसमें व्याप्य व्यापक संबंध लगाते हैं, और रागादि परिणाम को ये पुद्गल का व्याप्य कह देते हैं। ख्याल में आई बात? अपेक्षा ख्याल में आती है? क्यों, आप थे सुबह के प्रवचन में कि आपके क्लास में नहीं था? वो आप ही को पूछ रही हूं, थे ना? हाँ, व्याप्य व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में होता है। गुरुदेव के प्रवचनों में जहां समयसार के प्रवचन होते हैं, अध्यात्म की अपेक्षा लगती है, वहां रागादि भावों का कर्तापना छुड़ाने के लिए राग को पुद्गल का कार्य है कहने में आता है। परंतु क्या वो सर्वथा पुद्गल का कार्य है? भेद ज्ञान के प्रयोजन से हमने उसको अपने से भिन्न किया है, क्योंकि वो हमारा सही स्वरूप नहीं है। वो भी अपेक्षा ख्याल में लिए बिना हमें तो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। राग अपने पर्याय में परिणमन में है ये तो ज्ञान ने स्वीकार किया, फिर अभी श्रद्धा क्या कहती है? ये मेरा कार्य नहीं हो सकता। तो वहां अपना कार्य किसको कहा? भगवान आत्मा मैं हूं, तो मेरा कार्य क्या है? वीतरागी परिणाम मेरा कार्य है, ये जो ज्ञान पर्याय हो रही है वो मेरा कार्य है। वहां तो ऐसा कहा, ये राग को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो मेरा कार्य और राग पुद्गल का कार्य, उसको पुद्गल का परिणाम कहा। अपेक्षा सहित बात है, समय सार का विषय वस्तु उसकी अलग है, प्रवचन सार की विषय वस्तु अलग है। समय सार में तो निर्मल पर्याय को द्रव्य के साथ रहा है, भगवान आत्मा की बताए, नियम सार में उसको भी जुदा कर दिया, वो निर्मल पर्याय को भी भिन्न करेंगे। अपेक्षावश हमें कौन सी अपेक्षा है और उसका प्रयोजन क्या है उसको ख्याल में लेना चाहिए। अभी अपना समय हो चुका, यही रुकते हैं, बाकी चर्चा हम शाम को करेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की जय।